नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। आम आदमी पार्टी नेताओं की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नोटिस भेजा है। सीएम केजरीवाल को नोटिस शराब घोटाले से जुड़े मामले में ही भेजा गया है। उन्हें 2 नवम्बर को ईडी से पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले मुख्यमंत्री को सीबीआई अप्रैल 2023 में पूछताछ के लिए बुला चुकी है। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल से ईडी दिल्ली की नई शराब नीति मामले में पूछताछ करेगी। वहीं दूसरी ओर आज दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना और एस वी एन भट्टी की पीठ केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईडी द्वारा मनीष सिसोदिया के खिलाफ जाँच किए जा रहे मामलों पर सोमवार को फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट इस मामले की सुनवाई 6 से 8 महीने में पूरी करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए उनकी प्रतिबद्धता आज भी सभी का मार्गदर्शन करती है। मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सरदार पटेल की जयंती पर हम उनकी अदम्य भावना, दूरदर्शी नेतृत्व और असाधारण समर्पण को याद करते हैं, जिससे उन्होंने हमारे राष्ट्र के भाग्य को आकार दिया। राष्ट्रीय एकता के लिए उनकी प्रतिबद्धता आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। हम हमेशा उनकी ऋणी रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई प्रमुख नेताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मंगलवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय राजधानी के पटेल चौक पर आयोजित एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू, धनखड़, शाह और अन्य नेताओं ने भारत के पहले गृह मंत्री की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री थे और उन्होंने आज़ादी के बाद भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मामले में आज यानी 31 अक्टूबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान बेंच ये तय करेगी कि राजनीतिक दलों की फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड वैध है कि नहीं। पार्टियों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत चुनावी बॉन्ड योजना को 2 जनवरी 2018 को सरकार की ओर से अधिसूचित किया गया था। इसे नकद चंदे के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। जस्टिस चीफ डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। यूपी के हरदोई में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहां सवायजपुर थाना इलाके में सोमवार देर शाम एक बोलेरो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे कार सवार एक परिवार के 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 4 साल का बच्चा भी शामिल है, पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मृतकों के शव को निकालने के लिए गाड़ी को काटना पड़ा। हादसा बिलहौर कटरा राजमार्ग पर सवायजपुर कोतवाली क्षेत्र के खमरिया गाँव के पास हुआ। खमरिया गांव के पास बोलेरो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के पर खच्चे उड़ गए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच खींचतान को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि विपक्षी इंडिया गठबंधन के भीतर हालात ठीक नहीं हैं। उमर अब्दुल्ला उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में मीडिया से बात करते हुए कहते हैं, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ आंतरिक कलह चल रही है जो देखी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, खासकर उन 4-5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं। हमने देखा है कि कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दोनों कह रहे हैं कि वो यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये इंडिया गठबंधन के लिए अच्छा नहीं है। शायद इन राज्य चुनावों के बाद हम फिर मिलेंगे और साथ मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस और एम कोडंग दरम की तेलंगाना जन समिति ने 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी, राज्य में पार्टी मामलों के प्रभारी मणिकराव ठाकरे और अन्य पार्टी नेताओं द्वारा यहां टीजेएस कार्यालय में कोडंदराम से मुलाकात के बाद सोमवार को इस फैसले की घोषणा की गई। रेवंत रेड्डी ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति के जनविरोधी शासन को खत्म करने के लिए टीजेएस का सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस चुनाव में सत्ता में आई तो टीजेएस की सरकार में अहम भूमिका होगी। कोची में एक ईसाई धार्मिक सभा में बम विस्फोटों की जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। रविवार को किए गए इन विस्फोटों में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 50 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि डोमिनिक मार्टिन की गिरफ्तारी 7 बजे शाम को औपचारिक रूप से दर्ज की गई। विशेष जांच दल के अधिकारी ने यहां संवाददाताओं को बताया कि आरोपी के खिलाफ बहादांस की धारा 302 तथा विस्फोटक कानून की धारा 3 के अलावा अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम के प्रावधान भी लगाए गए हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।